नमस्कार, आज हम एल्ड वॉल्डमैन के उपन्यास हेल्प वांटेड पर बात करेंगे। ये उपन्यास एक बहुत ही बेचैन करने वाला और जरूरी सवाल पूछता है।
हाँ, कि जब एक मामूली सी तरक्की के लिए, मतलब बेहतर तनख्वाह और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए,
जो कि बुनियादी जरूरतें हैं,
बिल्कुल, जब उनके लिए आपको अपने ही सहकर्मियों से लड़ना पड़े, तो इंसानियत कहाँ बचती है?
और वॉल्डमैन हमें किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के एक बड़े से रिटेल स्टोर टाउन स्क्वायर की दुनिया में ले जाती हैं।
और वो दिखाती हैं कि असली लड़ाइयाँ तो अक्सर खामोशी से लड़ी जाती हैं।
और वो दुनिया?
वो दुनिया तो हम सबने कहीं ना कहीं देखी है।
हाँ, बड़े बड़े स्टोर्स के वो कृत्रिम रूप से रोशन अंथीन गलियारे
और वो फ्लोरेसेंट लाइटों की लगातार भिनभिनाहट।
वॉल्डमैन इस माहौल को सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं करती,
नहीं, वो इसे एक किरदार बना देती हैं। एक ऐसी जगह जहाँ कोई आत्मा नहीं है, जहाँ घड़ियाँ धीमी चलती हैं
और जहाँ काम करने वालों की उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं।
ये सिर्फ एक स्टोर नहीं है, ये आधुनिक अमेरिकी पूंजीवाद का एक छोटा सा मॉडल है,
जहां लोग दिखते तो हैं पर असल में अदृश्य होते हैं।
बिल्कुल सही कहा। ये उन लोगों की कहानी है जिनके लिए नौकरी, कोई करियर या पैशन नहीं है,
बल्कि जिंदा रहने और दिवालिया होने के बीच की एक पतली सी डोर है।
हाँ, और इसी स्थिर, लगभग उबाऊ माहौल में कहानी की शुरुआत होती है।
कहानी घूमती है मिस्क डिपार्टमेंट के कुछ पार्ट टाइम कर्मचारियों के इर्द गिर्द।
मिस्क मतलब जहां तरह तरह की चीजें मिलती हैं, कम वेतन, काम के घंटे जो हर हफ्ते बदलते हैं,
और भविष्य की कोई गारंटी नहीं।
तो उनकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही है, सामान लगाना, ग्राहकों की मदद करना
और दिन खत्म होने का इंतजार करना।
उनके बीच एक अजीब सा बेमन का भाईचारा है, एक दूसरे की शिकायतें सुनते हैं, मैनेजर का मजाक उड़ाते हैं।
लेकिन ये सब कुछ एक घोषणा से बदल जाता है।
हाँ, और यहीं से उपन्यास असल में रफ्तार पकड़ता है।
वो एक घोषणा जो एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है,
जिसकी लहरें सब कुछ बदल देती हैं। मैनेजर टिम एक दिन अपनी टीम को इकट्ठा करता है
और बताता है कि डिपार्टमेंट में एक फुल टाइम पद खाली हो रहा है।
और ये कोई मामूली खबर नहीं है।
नहीं,
उन कर्मचारियों के लिए जिनके लिए हर डॉलर मायने रखता है, फुल टाइम पद का मतलब है
एक स्थिर तनख्वाह, हेल्थ इंश्योरेंस,
छुट्टियों के लिए पैसे और सबसे बढ़कर एक तरह की सुरक्षा।
उनके लिए तो जैकपॉट लगने जैसा है।
हाँ, ये खबर उनके बीच बिजली के करंट की तरह फैलती है
और यहीं से उपन्यास का मनोवैज्ञानिक ड्रामा शुरू होता है।
कल तक जो लोग सहकर्मी थे, एक दूसरे का सहारा थे,
वे अचानक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं।
दोस्ती की जगह शक ले लेता है।
हर बातचीत, हर काम, हर मुस्कुराहट एक अनकहे इंटरव्यू का हिस्सा बन जाती है।
हाँ, एक खामोश, ऊंचे दाव वाली प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है।
माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है।
कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है और कौन मैनेजर की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, सब एक दूसरे को तौलने लगते हैं।
और इस दौड़ में खास तौर पर चार लोग हैं।
हाँ, और हर किसी का इस मौके को जीतने का तरीका एकदम अलग है, जो उनकी पूरी शख्सियत को दिखाता है।
यहीं पर वॉल्डमैन का लेखन कमाल का है। वो दिखाती हैं कि लोग दबाव में कैसे अलग अलग रणनीतियां अपनाते हैं।
तो इन चार मुख्य दावेदारों से मिलते हैं।
हाँ, चलिए, सबसे पहले मेरेडिथ, जो शायद सबसे ज्यादा हमदर्दी जगाती हैं।
मेरेडिथ लगभग 50 की उम्र की एक अकेली माँ,
और वो स्टोर की सबसे पुरानी और वफादार कर्मचारी है।
उसकी रणनीति बहुत सीधी सादी है, कड़ी मेहनत। वो कभी छुट्टी नहीं लेती, हमेशा समय पर आती है
और अपना काम पूरी लगन से करती है।
वो मानती है कि वफादारी एक बैंक खाते की तरह है और उसने सालों से इस खाते में अपनी मेहनत जमा की है,
तो अब उसे उसका फल मिलना ही चाहिए।
उसकी सोच एक पुरानी दुनिया की सोच है, जहां माना जाता था कि अगर आप कंपनी के प्रति वफादार रहेंगे तो कंपनी आपका ख्याल रखेगी।
वो इस खेल के नए नियमों को समझ ही नहीं पाती।
और फिर दूसरी तरफ है निकोल,
जो इस खेल को बहुत अच्छी तरह समझती है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है।
हाँ, निकोल युवा है, उसके पास कॉलेज की डिग्री है और वो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझती है।
उसकी रणनीति है अपनी काबिलियत साबित करना।
वो सिर्फ अपना काम नहीं करती बल्कि मैनेजर को बिन मांगे सुझाव भी देती है
कि स्टोर की बिक्री कैसे बढ़ाई जा सकती है, सामान को कैसे बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है।
उसे लगता है कि उसके नए और अच्छे विचार ही उसे ये नौकरी दिलाएंगे।
वो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि मैनेजर बनने की काबिलियत रखती है।
लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहती है कि उसके सुझावों को मदद की तरह नहीं देखा जा रहा
बल्कि उसके मैनेजर टिम के अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
और ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है।
बिल्कुल। तीसरा उम्मीदवार है माइलो,
एक शांत, विचारशील युवक जो पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से यहाँ फंसा हुआ है।
वो इस पूरी प्रतियोगिता को एक तरह की नफरत से देखता है।
हाँ, उसकी रणनीति है इस सबसे ऊपर उठकर खामोशी से अपना काम बेहतरीन तरीके से करना।
उसे उम्मीद है कि उसकी योग्यता खुद बोलेगी
और उसे इस ऊंची राजनीति का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। वो अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता है।
और आखिर में आता है लूकस।
हाँ, लूकस, जो शायद सबसे दिलचस्प किरदार है,
क्योंकि वो इस खेल को बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहा है।
बिल्कुल, वो टीम का सबसे आकर्षक और एक तरह से लापरवाह सदस्य है।
उसे मेहनत पर ज्यादा यकीन नहीं है।
उसकी रणनीति है अपने सामाजिक कौशल का इस्तेमाल करना।
वो मैनेजर टिम के साथ मजाक करता है, उसकी तारीफ करता है, उससे दोस्ती गांठने की कोशिश करता है।
वो समझता है कि इस खेल में पसंद किया जाना भी मेहनत जितना ही मूल्यवान हो सकता है।
सही कहा, वो सिस्टम की उस खामी को सबसे बेहतर समझता है जिसे बाकी लोग देख नहीं पा रहे। वो जानता है कि आखिरी फैसला किसी कंप्यूटर से नहीं बल्कि एक इंसान के दिमाग से आना है।
और यहीं पर कहानी का असली केंद्र है, वो इंसान, मैनेजर टिम।
मेरेडिथ की वफादारी, निकोल की बुद्धिमत्ता, माइलो की योग्यता और लूकस का आकर्षण,
इन सबका भविष्य टिम के हाथ में है।
और टिम कोई स्टेरियोटिपिकल विलन नहीं है। वॉल्टमैन ने उसे बहुत परतदार बनाया है।
हाँ, वो खुद एक असुरक्षित इंसान है जिसकी अपनी जिंदगी में कुंठाएं हैं।
वो ऊपर से आने वाले कॉर्पोरेट दबाव और नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों के बीच फंसा हुआ है।
ये प्रमोशन देने का छोटा सा अधिकार उसे ताकत का एहसास कराता है
और वो इसका इस्तेमाल अपनी असुरक्षाओं को शांत करने के लिए करता है।
और यही उपन्यास मेरिटोक्रेसी यानी मेधा तंत्र के मिथक पर सबसे तीखा प्रहार करता है।
हाँ, इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमें टिम के विचारों तक सीधी पहुंच मिलती है।
हम जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, जबकि उसके कर्मचारी इस बात से अनजान हैं।
ये एक तरह की नाटकीय विडंबना पैदा करता है जो पढ़ने में बहुत तकलीफ देह है।
हम देखते हैं कि वो सबसे अच्छे कर्मचारी की तलाश कर ही नहीं रहा है।
वो एक ऐसा फैसला ले रहा है जो उसके अहंकार को संतुष्ट करे।
उसका नजरिया पूरी तरह से पक्षपाती है।
जब वो मेरेडिथ को देखता है तो उसे सालों का अनुभव और वफादारी नहीं दिखती।
नहीं, वो सोचता है ये तो यहीं अटकी हुई है, इसमें आगे बढ़ने की कोई ललक नहीं है।
वो मेरेडिथ की कड़ी मेहनत को गतिशीलता की कमी के रूप में देखता है।
ये कितना डरावना सच है कि आपका बॉस आपकी सबसे बड़ी खूबी को आपकी सबसे बड़ी खामी मान सकता है।
और निकोल के बारे में तो उसके विचार और भी ज्यादा खतरनाक है।
हाँ, वो शायद सबसे काबिल उम्मीदवार है, लेकिन टिम उसकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा से खतरा महसूस करता है।
वो खुद को यह कहकर समझाता है कि
निकोल तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसे ये नौकरी मिली तो वो कुछ ही महीनों में छोड़कर चली जाएगी।
असल में वो एक ऐसे कर्मचारी से डरता है जो उससे ज्यादा जानता हो,
जो उसे चुनौती दे सके। वो आराम चाहता है, काबिलियत नहीं।
और वो आराम उसे लूकस में मिलता है।
बिल्कुल, लूकस का मजाकिया और लापरवाह अंदाज उसे पसंद आता है।
वो लूकस को एक प्रबंधनीय गैर खतरनाक कर्मचारी के रूप में देखता है।
लूकस उसे चुनौती नहीं देता बल्कि उसके ईगो को सहलाता है, उसे अच्छा महसूस कराता है।
तो कर्मचारी एक दौड़ में भाग रहे हैं ये सोचकर कि सबसे तेज दौड़ने वाला जीतेगा,
लेकिन रेस का जज तो ये देख रहा है कि कौन उसे सबसे ज्यादा पसंद है।
और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका दुखद अंत होना तय लगता है।
कहानी का चरमोत्कर्ष कोई बड़ा टकराव या ड्रामा नहीं है जो इसे और भी यथार्थवादी बनाता है।
ये एक बहुत ही शांत और विनाशकारी पल है।
टिम एक दिन टीम को इकट्ठा करता है और बिना किसी भूमिका के लगभग लापरवाही से घोषणा करता है कि उसने लूकस को चुना है।
बस एक वाक्य में चार लोगों की हफ्तों की मेहनत और सालों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं।
उस एक पल का जो भावनात्मक असर बाकी लोगों पर पड़ता है वो दिल तोड़ने वाला है।
सबसे ज्यादा असर शायद मेरेडिथ पर होता है।
हाँ, मेरेडिथ पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी का यकीन कि मेहनत का फल मिलता है एक धोखा था।
उसकी सालों की वफादारी का कोई मतलब नहीं निकला।
उपन्यास में उसे ऐसे दिखाया गया है जैसे उसके अंदर की रोशनी ही बुझ गई हो, वो चुप और गुमसुम हो जाती है।
उसकी आत्मा कुचल दी जाती है।
और निकोल, जिसका दाव अपनी बुद्धिमत्ता पर था,
निकोल को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, कि दुनिया में बुद्धि और तर्क की कोई जगह नहीं है।
उसका आदर्शवाद मर जाता है
और वो तुरंत यथार्थवादी और निंदक बन जाती है।
वो उसी दिन दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर देती है, ये समझकर कि इस जगह पर उसकी कोई कद्र नहीं।
और माइलो, जो इस सबसे ऊपर रहने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है उसका रिएक्शन सबसे गहरा है।
हाँ, माइलो एक थकी हुई स्वीकृति महसूस करता है, जैसे उसे कहीं ना कहीं इसी नतीजे की उम्मीद थी।
उपन्यास में उसका एक बहुत ही मार्मिक विचार है जो पूरी कहानी का सार है।
वो सोचता है कि सबसे बुरा हिस्सा निराशा नहीं है بلکہ یہ احساس ہے کہ انہیں اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے آپس میں لڑوایا گیا۔
وہ اس فل ٹائم نوکری کو کوئی بڑا پرسکار نہیں مانتا۔
نہیں، بلکہ اسی پنجرے کا تھوڑا بہتر سنسکرن مانتا ہے۔
کیا خوب کہا ہے، یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ان کی گریما کا سوال تھا،
اور سسٹم نے ان سے وہ بھی چھین لیا۔
یہاں تک کہ لوکس کی جیت بھی کھوکھلی لگتی ہے۔
ہاں، اسے پروموشن مل جاتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ اسے اپرادھ بودھ ہوتا ہے،
اور اس کے اپنے سہکرمیوں کے ساتھ رشتے ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں۔
سٹور کا سماجک تانا بانا، جو پہلے سے ہی کمزور تھا، اب پوری طرح بکھر جاتا ہے۔
اور اپنیاس کوئی آسان سمادھان نہیں دیتا۔ کوئی ہیرو نہیں ہے جو آ کر سسٹم کو بدل دے۔
پاتر وہی رہ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی، بس ان کی امیدیں تھوڑی اور کم ہو گئی ہیں۔
سب سے پہلا اور سب سے ضروری ہے میدھا تنتر کا بھرم۔
ہاں، یہ وچار کے سب سے قابل انسان ہی آگے بڑھتا ہے، ایک خوبصورت جھوٹ ہے،
اور یہ اپنیاس اس جھوٹ کو بہت بے رحمی سے بے نقاب کرتا ہے۔
بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ اصل دنیا میں فیصلے یوگیتا کے آدھار پر نہیں، بلکہ ویکتیگت راجنیتی، پورواگرہ، پسند ناپسند
اور مینیجر کی اسرکشاؤں کے آدھار پر لیے جاتے ہیں۔ ٹم کا فیصلہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔
دوسرا بڑا وشے ہے امریکی شرمک ورگ کی انشچتتا۔
یہ کہانی کسی شاندار کریئر یا بڑے پروموشن کی نہیں ہے۔
نہیں، یہ استھرتا اور سنکٹ کے بیچ کے فرق کی ہے۔ یہ ہیلتھ انشورنس جیسی بنیادی ضرورتوں کی ہے،
جس کے لیے لوگ اپنی گرما تک داؤں پر لگانے کو مجبور ہیں۔
اور ان سب کے بیچ شرم میں سمان کی کھوج کا وشے بھی ہے۔
ایک ایسے کام میں آتم سمان کیسے کھوجا جائے جسے سماج اکثر مہتوہین اور چھوٹا سمجھتا ہے۔
ہر پاتر اپنے کام میں سمان کھوجنے کی کوشش کرتا ہے۔ میریڈتھ اپنی وشوسنیتا کے ذریعے، نکول اپنی بدھی کے ذریعے،
مائلو اپنی قابلیت کے ذریعے۔
یہ اپنیاس ہمیں ان سروس ورکرز کی پوری انسانیت دیکھنے پر مجبور کرتا ہے جنہیں ہم اکثر اندیکھا کر دیتے ہیں۔
یہ ادرشیہ کو درشیمان بناتا ہے۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آرتھک ویوستھا کیول سنکھیاؤں، منافع اور نقصان کے بارے میں نہیں ہوتی،
یہ مانویہ بھاوناؤں، پورواگرہوں اور گریما کی گہری ضرورت کے بارے میں ہے۔
اور یہ آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہے، کیونکہ یہ ان خاموش انیایوں کو اجاگر کرتی ہے جو انگنت دفتروں اور سٹورز کی فلورسنٹ لائٹوں کے نیچے ہر دن ہوتے ہیں۔
اور یہ تتھا تک امریکن ڈریم کے وچار کو ہی چنوتی دیتی ہے، یہ دکھاتے ہوئے کہ کئی لوگوں کے لیے سیڑھی کا اگلا پائدان بھی پہنچ سے بہت دور ہے، چاہے وہ کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لیں۔ یہ سنواد یہیں سماپت ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے وشو ساہتیہ کی ایک اور انوٹھی کرتی کے ساتھ۔ یہ آڈیو سارانش آپ کے لیے एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।